नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 26 और 27। 25 में अनुवाद नहीं है तो हम लोग अब 26 27 का उच्चारण करेंगे। श्री हिरण्यकश्यपु उवाच कल्पान्ते काल सृष्टेन यो अंधेन तमसा वृतम् अभिव्यनग जगदिदम् स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदम् सृजत्य पतिलुम्पति रजा सत्त्वतमोज्ञाम्ने पराय महते नमः। कल्पान्ते काल सृष्टेन यो अंधेन तमसा वृतम् अभिव्यनगम् जगदिदम् स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदम् सृजत्य पतिलुम्पति रजा सत्त्वतमो धाम्ने पराय महते नमः। कल्पान्ते काल सृष्टेन यो अंधेन तमसा वृता अभिव्यनग जगदिदम् स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदम् सृजत्य पतिलुम्पति रजा सत्त्वतमो धाम्ने पराय महते नमः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। शब्दार्थ श्री हिरण्यकश्यपु उवाच हिरण्यकश्यपु ने कहा कल्पान्ते ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के अंत में काल सृष्टेना काल द्वारा सृजित यह जो अंधेना घने अंधकार से तमसा अज्ञान से आवृतम ढका हुआ अभिन्यक प्रकट या व्यक्त जगत विराट अभिव्यक्ति इदम यह स्वयं ज्योति आत्मतेज स्वरोचिषा अपने शरीर की किरणों से आत्मना अपने से त्रिव्रता प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संचालित च भी इदम यह भौतिक जगत सृजति उत्पन्न करता है आवती पालन करता है लूमपति संहार करता है, रजह रजोगुण का, सत्व सतोगुण, तमह तथा तमोगुण का, धामने परम स्वामी को, पराय परम को, महते महान को, नमः मेरा सादर नमस्कार। कृपया अनुवाद पीछे दोहरा सकते हैं। मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से जो प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है संपूर्ण जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है। वे ब्रह्मा जी ही सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण इन तीन प्रकृति के गुणों के आधार हैं। तात्पर्य कृपया ध्यान से सुनिए। अभिन्यक जगत इदम शब्द इस विराट जगत को उत्पन्न करने वाले के लिए आए हैं। आदि सृष्टा भगवान कृष्ण हैं, जन्मादस्य यत। ब्रह्मा जी तो गौण सृष्टा हैं। जब भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को शिल्पी के रूप में व्यवहार जगत की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान की जाती है तो वे इस ब्रह्मांड के परम शक्तिशाली स्वरूप बन जाते हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति कृष्ण द्वारा उत्पन्न की जाती है और बाद में इस शक्ति का लाभ उठाकर ब्रह्मा समग्र व्यवहार जगत का शिल्पन करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में स्वर्ग लोक तक सारी वस्तुएं जल से अप्लावित हो उठती हैं और अगले प्रातःकाल जब ब्रह्मांड में अंधकार रहता है तो ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। अतएव उन्हें यहाँ पर ब्रह्मांड का आदि सृष्टा कहा गया है। त्रीन गुणान गृणोति, ब्रह्मा जी प्रकृति के तीनों गुणों का लाभ उठाते हैं। यहाँ पर प्रकृति को त्रिव्रता कहा गया है अर्थात वह तीनों गुणों की उद्गम है। इसकी टीका में श्री मध्वाचार्य कहते हैं कि त्रिव्रता का अर्थ है प्रकृत्या। भगवान कृष्ण आदि सृष्टा हैं और ब्रह्मा जी आदि शिल्पी हैं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज सुबह के भागवत कक्षा में। कई दिनों बाद भागवत की कथा फिर से दोबारा से प्रारंभ हुई है। अभी पिछले 10 दिनों से हरि नाम पर चर्चा हो रही थी तो एक बार आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि कथा कहाँ से चल रही है। हिरणाक्ष का वध होने के बाद जो है हिरणाकश्यपु ने अपने परिवार के लोगों को समझाया और वो बहुत रो रही थी, रुदन कर रही थी। उसके बाद यमराज जी एक बालक के रूप में आते हैं, फिर वो समझाते हैं और उसके बाद हिरणाकश्यपु जो है वो तपस्या करने चला जाता है क्योंकि वो अपने भाई का की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। और तपस्या करते हुए जो है वो बहुत कठोर तपस्या करते हैं हिरणाकश्यपु। तो उसके बाद ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो पहले ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उसके बाद जो है वो उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये जो श्लोक है वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना में कहा गया श्लोक है जो कि हिरणाकश्यपु बोल रहे हैं। इससे जो पहला श्लोक था 25वें का मैं उसका जरा अनुवाद पढ़ लेता हूँ। तब दैत्यराज भूमि से उठकर एवं ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया। वह अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपित पुलकित शरीर से अपने हाथ जोड़कर तथा अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निज तेज से, अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से, जो प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है, संपूर्ण जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है। वे ब्रह्मा जी ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों प्रकृति के गुणों के आधार हैं। तो ये प्रार्थना का जो है पहला श्लोक है जो कि वो ब्रह्मा जी के लिए कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने वैसे तो इस परपट में सब कुछ तात्पर्य में स्पष्ट कर दिया है, और कि जो आदि सृष्टा हैं वो कृष्ण हैं, और जो गौण सृष्टा हैं यानी सेकेंडरी क्रिएटर जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो परंतु यहाँ कई कंट्राडिक्शन भी है, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली मैं अभी सबसे पहले जो इसमें चर्चा आती है कि वो इस बात हिरण्याकश्यप चर्चा करते हैं कि ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के बाद जो है प्रलय हो जाता है, और प्रलय होने का मतलब है कि ये जो है नैमित्तिक प्रलय है, ये नैमित्तिक प्रलय होता है। तो नैमित्तिक प्रलय जो है वो ब्रह्मा जी के हर एक दिन के बीतने के बाद यानी 12 घंटे के बाद ये नैमित्तिक प्रलय हो जाता है। इस नैमित्तिक प्रलय में पूरा भौतिक सृष्टि नष्ट नहीं होता, केवल स्वर्गलोक तक, स्वर्गलोक तक के जो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो जल में डूब जाते हैं। पहले जो है सूखा पड़ता है लास्ट के पहले 100 ईयर्स तक, उसके बाद फिर जो है वो हवा चलती है नेक्स्ट 100 ईयर्स तक, इसमें लोग मरते जाते हैं, सृष्टि के लोग खत्म होते चले जाते हैं कंटिन्यूसली, और फिर वर्षा होती है 100 ईयर्स तक, और उसी वर्षा की वजह से जो है वो फिर ये पूरा प्लैनेट पानी से भर जाता है, समुद्र जो है मतलब स्वर्ग लोक तक। तो स्वर्ग लोक तक जो है ये ऊपर के जो लोग हैं मह जन तपा और सत्यम, ये नष्ट नहीं होते, हालांकि ये भौतिक जगत में है, परंतु ये जो है नैमित्तिक प्रलय में ये चारों जो है भौतिक सृष्टि के जगत हैं, ये चारों नष्ट नहीं होते हैं। तो ये जैसे उसमें इसमें बताया गया है कि वो इसी की चर्चा कर रहे हैं हिरण्याकश्यपु, कि आपके जीवन के अंत में जो है वो, और प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि स्वर्ग लोक तक जो है वो पानी में डूब जाता है। फिर एक इसमें जो ब्रह्मा जी की सिचुएशन या ब्रह्मा जी की जो स्थिति है उसके बारे में जो हिरण्याकश्यपु बता रहे हैं कि आप आदि सृष्टा हैं और आप सारे गुणों के आधार हैं, ये जो है ये फ्लैटरिंग वर्ड्स है। फ्लैटरिंग मतलब आप समझ लीजिए कि एक काम निकलवाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मा जी ना आदि सृष्टा हैं और ना ही वो तीनों गुणों के आधार हैं, ना वो तीनों गुण उनसे उत्पन्न होते हैं, ये सारी भगवान की शक्तियों से उत्पन्न होते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जो जीवात्माएं, जो बद्ध जीवात्माएं कर्मी लोग हैं, वो किस तरह से अपना काम बनाने के लिए जो है कैसी फ्लैटरिंग करते हैं। श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री गौर निताय जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो किस तरह से जो है वो कर्मी लोग जो हैं किस तरह से फ्लैटरिंग करके अपना काम निकलवाते हैं। ये आप कोई भी व्यक्ति इस श्लोक को जो है कोट कर सकता है कि यहाँ पर भागवतम में क्या श्लोक है, भागवतम में ऐसा कहा गया है, और भागवतों में किसने बोला है और किस लिए बोला है ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो ये अनर्थ हो जाएगा। हम भागवतम का इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्रों को जो है वो गुरु के माध्यम से, एक सीनियर वैष्णवों के माध्यम से समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है आप आदि सृष्टा हैं। अब कोई जो ब्रह्मा जी का की पूजा करता है, उनका भक्त है, वो तो कहेगा कि ब्रह्मा जी आदि सृष्टा है और आपके भागवतम में लिखा गया है। इस तरह से हम देखते हैं जो पुराणों का जो डिवीजन है वो इसी के आधार पर है। जो शिव भक्त होते हैं वो ऐसी फ्लैटरिंग करते हैं, मतलब ऐसे शब्द बोलते हैं शिव जी के लिए, वो सबसे बड़े जो हैं वो देवता हैं और सबसे बड़े व्यक्ति हैं इस सृष्टि के। तो व्यक्ति परेशान होता है कि उस पुराण में तो ऐसा लिखा हुआ है, दूसरे वाले पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, तीसरे वाले पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। कंट्राडिक्शन है कि नहीं, एक जगह लिखा हुआ है कि शिव जी सबसे बड़े हैं, आप विष्णु पुराण खोलोगे तो उसमें लिखा है विष्णु सबसे बड़े हैं, शिव पुराण खोलोगे आपने कहा कि शिव जी सबके सृष्टा हैं, आप ये ब्रह्म वैवर्त पुराण और इस तरह के जो ब्रह्मांड पुराण जो ये हैं इसमें सब लिखा गया कि ब्रह्मा जी सब कुछ हैं। तो बहुत इसीलिए ये कहा जाता है बार बार प्रभुपाद के आप परपट में देखोगे कि अंडर जो है गाइडेंस इन चीजों को समझना चाहिए कि हमें किस तरह को किस, अब ये भी श्लोक भागवतम का ही है, अब कोई इसको ये नहीं प्रसंग ना बता करके इसको कोट कर दे कि ये किसने बोला, ये नहीं ना बताया तो लिखा गया भागवतम का श्लोक आप देखो। तो आदि सृष्टा जो है तो इसलिए कंफ्यूजन होती है, इसलिए तो हमें ये सब भी ध्यान में रख करके श्लोक और ऐसी चीजों को समझना भी चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों को जो है वो कट कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जितने देवी देवता के वर्षी पर हैं, जो डेमी गॉड्स वर्षी पर हैं, वो इसी तरह से अपना पक्ष रखते हैं। तो हिरण्यकश्यपु जो है वो इसी बात को कह रहा है, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है। ये हमें नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति है, और ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे मूल आदि व्यक्ति हैं, और उनको एक विशेष कार्य सौंपा गया है। तो विशेष कार्य सौंपा गया है तो भगवान ने उनके उनको उसके लिए विशेष शक्ति भी प्रदान की है। क्योंकि जो हम देखते हैं कि भगवान के अंदर जो क्वालिटीज हैं और जो एक्टिविटी भगवान कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटी ब्रह्मा जी कर रहे हैं। आप देखो कि सृष्टि का को उत्पन्न करना, देवताओं को उत्पन्न करना, ऋषियों को उत्पन्न करना, बड़ी सारी चीजें उन्होंने, संसार के सारी चीजों को उन्होंने अपने उत्पन्न किया है अपने शरीर के किसी न किसी भाग से। कहीं से देवता उत्पन्न हुए हैं, कहीं से जो है राक्षस उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह है जो है। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो बहुत स्थूल रूप से हम देखें तो ये समझा जाता है कि ब्रह्मा जी सब कुछ है, परंतु आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सारा सामान मंगवा लिया किसी व्यक्ति ने, और जो मिस्त्री है वो अब दीवार बना रहा है, या वो घर बना रहा है, या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पर सामान किसने दिया? तो ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है, इसी तरह से है। सारी सामग्री भगवान ने उपलब्ध करा दी सब कुछ, और उसके बाद जो है उन्होंने इसका निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी की स्थिति जो है, और भगवान ने अपना विशेष जो शक्ति भी उनको प्रदान की, क्योंकि भगवान की तरह वो एक्टिविटी भी कर रहे हैं। जिस तरह से भगवान एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की भी एक्टिविटी भी उसी तरह से है। तो इसका मतलब भगवान ने जो है उनको ये विशेष शक्ति प्रदान की है उनको। हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है, हम भी जीव हैं, बट हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी भी जीव हैं, उनके अंदर जो है लेकिन ये शक्ति है। इसका मतलब वो विशेष जीव है, जीव है परंतु विशेष है, उनके अंदर विशेष पावर दिया गया है। तो ये समझना चाहिए। और फिर क्या है कि हाईली एम्पावर्ड व्यक्ति हैं, क्योंकि वो जो ब्रह्म जो भगवान जो कार्य उनसे करवाना चाहते हैं उस, और वो उसी काम को वो उसी रूप भगवान टोटो उसी रूप में जैसा भगवान चाहते हैं उसी रूप में जो है वो उस कार्य को कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मा जी की स्थिति है वैसे वैसे वो जीव तत्व तो होते हैं। जैसे शिव जी का है तो शिव जी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विष्णु तत्व, क्यों विष्णु तत्व के ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक परिवर्तित रूप है। ब्रह्मा जी जो है वो प्योरली जीव होते हैं मोस्टली टाइम। तो क्या है कि वो जो ब्रह्मा जी जो है, परंतु फिर भी उनमें विशेष पावर होता है, एक विशेष शक्ति होती है सृष्टि को करने के लिए, क्योंकि वो रजोगुण के अधिष्ठाता माने जाते हैं। और यही करते करते ब्रह्मा जी के अंदर भी जो ये भाव आता है कि वो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। जैसे नारद जी ने एक बार उनकी प्रार्थना करते हुए कहा कि आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च व्यक्ति हो और आप ही सब कुछ हो, तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको ज्ञान दिया कि मैं सब कुछ नहीं हूं, मेरे से भी ऊपर कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो हिरण्यकश्यपु है वो ब्रह्मा जी को सर्वोच्च व्यक्ति मानता है, कि वो वही व्यक्ति। इस तरह से हम दूसरा प्रसंग भी देखते हैं भागवतम में ही आता है, यमदूतों का। यमदूत क्या बोलते हैं यमराज को, कि आप भी आपके अलावा भी कोई स्वामी है इस जगत में। मतलब वो क्या समझते हैं यमराज को, कि वही सबसे बड़े स्वामी हैं, उनके ऊपर जो कोई स्वामी नहीं है। और यहां भी हिरण्यकश्यपु क्या समझ रहे हैं ब्रह्मा जी को, कि सबसे बड़े व्यक्ति हैं और यही सबके। और आगे के जो श्लोक हैं उसी तरह के हैं कुछ, कि आप जो है आप मतलब कंटिन्यूसली अभी चार पांच श्लोक में जो है छह श्लोक में उनकी स्तुति हो रही है, तो सारे श्लोकों में उसी तरह से प्रार्थनाएं करते हैं कि आप तेजोमय हो, आप स्वयं प्रकट हुए हो, इस तरह से बड़ी सारी चीजें जो है उनके उसमें प्रशंसा में बड़े सारे शब्द बोलते हैं। तो हम देखते हैं एक कर्मी व्यक्ति या एक साधारण व्यक्ति, आफ्टरऑल ब्रह्मा जी हैं क्या, एक डेमी गॉड है, सबसे बड़े जरूर हैं मान लीजिए, बट है तो डेमी गॉड,
पहले व्यक्ति, तो एक डेमीगॉड वर्शिपर या एक कर्मी व्यक्ति जो है किस तरह से वो उनकी प्रशंसा करता है और उनसे चीजों को निकलवाना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ब्रह्मा जी का पद ही प्राप्त करना चाहता है हिरण्यकश्यपु, क्योंकि वो सबसे बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है इस संसार का। तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है संसार का? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग के ब्रह्मा जी के पोस्ट को ही चाहता है, कि सबसे बड़ा व्यक्ति जो है। आप अप्रत्यक्ष रूप से देखिए क्या चाहता है, कि मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं इस संसार का। तो इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए वो जो है उसी को, उन्हीं को जो है उन्हीं का पोस्ट मांग रहे हैं एक तरह से, उन्हीं की सेवा कर, उन्हीं की तपस्या करके वो कह रहे हैं कि आप हटो और मैं आता हूं। हालांकि बाद में उनकी उनका लक्ष्य विष्णु को पराजित करना और विष्णु को पोस्ट को प्राप्त करना भी है, परंतु फॉर द टाइम बीइंग तो वो यही चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी का जो पद है वो मिल जाए। तो ये जो है एक खास है इसमें। और फिर जो है इसमें एक आत्म तेजस्वी स्वामी, जे फिर एक और फ्लैटरिंग वर्ड दिया गया है कि आत्म तेजस्वी स्वामी जो है, आप जो है स्वयं ये तेज सबके अंदर, चाहे वो डेमीगॉड्स ब्रह्मा जी हो या शिव जी हो, ये सारे तेज कहां से आते हैं? भगवान विष्णु से आते हैं। और तो यहां पर कहा जाए कि आप सेल्फ तेजस्वी हैं। ये कई तरह के जो है ये फ्लैटरिंग वर्ड यूज किए गए हैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। फिर जो क्योंकि इसमें जैसे हम उसमें देखते हैं भौतिक, उसमें यमराज के प्रसंग में भी देखते हैं कि वहां भी यमराज जी के लिए बताया जाता है कि आप, हम तो अब तक सही समझ रहे थे कि आप ही सबसे बड़े व्यक्ति हैं, आपके अलावा इस संसार में कोई है नहीं, तो फिर ये दूसरा व्यक्ति कहाँ आ गया, उसने हमें क्यों रोका, इस तरह से जो है वो इस तरह प्रसंग होता है। तो फिर हम देखते हैं कि जो दुरात्मा लोग होते हैं या जो जो व्यक्ति महात्मा नहीं है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कर्मी है या जिसके मन में जो है वो अलग तरह के भाव होते हैं और उसका कर्म जो अलग तरह का होता है, तो एक नीति शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है, बचस अन्यत मनस अन्यत कर्मस अन्यत दुरात्मनाम। उसका वचन जो है वो अलग होता है, मन भी अलग होता है और कर्म भी अलग होते हैं। अर्थात वचन से जो बोलता है वो एक्चुअल में वो चाहता नहीं है या वो करता नहीं है। जैसे एक होता है मैन ऑफ एक्शन और एक होता है मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ एक्शन मतलब वो केवल कर्मों में विश्वास रखता है, उस कर्म को कर दिया उसने, जिसको कर्मयोगी बोला जाता है। और एक व्यक्ति होता है जो जो उसने बोला उसके उसने उसको कर दिया, तो मैन ऑफ वर्ड, उसने जो बोला चाहे जैसा भी बोला उसने उसने कर दिया उसको। और एक तीसरा व्यक्ति होता है जो केवल बोलता है। तो जो दुरात्माओं का जो लक्षण बताया गया है कि उनके वचन और होते हैं, कर्म भी अलग होता है और मन भी अलग होता है, मतलब उनके कर्म में, मन में और वचनों में जो है एकात्मकता नहीं होती, मतलब एक जैसे नहीं होते। जो सोचते हैं वैसा कर्म नहीं करते और वैसा बोलते भी नहीं है, या जो बोलते हैं वैसा सोचते नहीं और जैसा सोचते हैं वैसा करते नहीं। तो ये तीनों में भेद होता है, पर महात्माओं में ये तीनों एक होते हैं, मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मनाम। महात्मा जो लोग होते हैं उनके कर्म में, वचन में और एक्शन में एकता होती है, अर्थात वो जो सोचेंगे वही बात करेंगे और जो बात करेंगे वही वो करेंगे, या फिर वाइस वर्सा कि वो जो करेंगे उसी को बोलते हैं और उसी को सोचते हैं। तो ये महात्माओं का लक्षण होता है कि महात्मा में इस तरह के गुण पाए जाते हैं, बट जो दूसरे लोग हैं उनमें दूसरी तरह का गुण होता है। तो ये जहां हिरण्यकश्यपु का जो प्रसंग है, आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा जी को क्यों बहुत अच्छे अच्छे सुंदर स्तुतियां करके ब्रह्मा जी से ज्यादा चीजें निकलवाना चाहता है। ये डेमीगॉड वर्शिपर के साथ सबके साथ होता है, तो कम से कम देना चाहता है, कम से कम देगा और ज्यादा से ज्यादा निकलवाना चाहता है। 1.25 रुपए की बूंदी चढ़ा दी, अब 1.25 रुपए का तो क्या नहीं मिलता, पर 10 रुपए की बूंदी चढ़ा दी और कहेंगे मेरा काम पूरा करवा दो, तो दिया क्या, कम से कम, और मांगते कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो ये डेमीगॉड वर्शिपर में खास होता है, बट अगर हमारे अंदर भी है तो हमारे लिए भी खतरा है कि हम देना कम चाहते हैं और लेना ज्यादा चाहते हैं, कि बट इस यहां तो उल्टा है, आपको सब कुछ देना पड़ेगा भगवान को, सब कुछ, खुद को भी समर्पित करना पड़ेगा, मन को, वचन को, कर्म को और खुद को सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा भगवान को, फिर भगवान जो है वो आपको कुछ देंगे या फिर सब कुछ दे देंगे। ऐसा नहीं कि भगवान जो डेमी गॉड वर्षी पर हैं, जो वो डेमी गॉड से जो चाहते हैं वो भगवान नहीं देते, भगवान ही देते हैं वो सब कुछ। परंतु और भगवान आप देखिए, जैसे ध्रुव के प्रसंग में, ध्रुव के प्रसंग में क्या है कि ध्रुव जो है वो भक्ति किस लिए करने गए थे, एक भौतिक चीज के लिए गए थे, उनको बड़ा राज्य चाहिए था। भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे थे कि उनको अपने दादाजी से एक बड़ा राज्य चाहिए। परंतु और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो फिर उन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वामी कृतार्थ हो उसमें वरम न याचे, कि मैं कृतार्थ हो गया, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान ये बात भूले नहीं कि ध्रुव तपस्या क्यों करने आया था, तो उन्होंने ध्रुव को सब कुछ दिया जिसके लिए वो सबसे पहले तपस्या करने के लिए आए थे, कि आप जो है एक दादा से भी बड़ा राज लो। अब दादा से बड़ा राज कैसे हो सकता, उनके दादा थे स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु का पूरी पृथ्वी पर राज था, इससे बड़ा राज कहां मिलेगा पृथ्वी के ऊपर, तो फिर कहां से दिया। भगवान ने अपने ही लोक का एक हिस्सा दे दिया उन्हें। ध्रुव लोक एक्चुअल में श्वेत द्वीप का एक हिस्सा है, जो कि यहां पर लोकल लोकल वैकुंठ है इस भौतिक जगत में, उसी का हिस्सा है श्वेत द्वीप। तो अब उसी में से एक जो हिस्सा उनको दे दिया, ये लो आप राज करो, ध्रुव लोक के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। तो भगवान भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देते, भगवान भी वो सब चीजें देते हैं अगर हम जो डेमीगॉड्स से आकांक्षा रखते हैं। तो हमें कुछ जो कुछ भी चाहिए, अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष कामा उदारधी तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम पदम, जो आपकी कामना नहीं भी है और आपकी बहुत सारी कामनाएं हैं, अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष कामा, या आपके मोक्ष की कामना है, तो क्या करना पड़ेगा, तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर हम तीव्रता से भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम किसी डेमी गॉड से या किसी चीज से चाहते हैं। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि कृष्णा टेस्टेड मी टू टाइम्स, कि भगवान ने मुझे मेरी दो बार परीक्षा ली, तब जब मेरे से सब कुछ छीन लिया, उन्होंने सब कुछ छीन लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं पेनलेस था मतलब बिल्कुल, और तब भी उन्होंने टेस्ट किया कि व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, और तब भी जब मुझे उन्होंने सब कुछ दिया, इतना सब कुछ कि मैं इस प्लेनेट पर मैं जहां भी जाता था वहां कुछ ना कुछ हमारी संपत्ति होती थी, यानी इस्कॉन की संपत्ति थी। मैंने आप किसी भी जो तीन चार प्लेनेट्स हैं जहां पर आदमी रहते हैं वहां पर इस्कॉन की संपत्ति है। आप नॉर्थ अमेरिका जाओ, साउथ अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, यूरोप जाओ, एशिया या ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाइए, वहां पर संपत्ति थी इस्कॉन की, और ये सब प्रभुपाद के समय में हो गया था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप मेरे पास सब कुछ दिया कृष्ण ने, फिर ही मुझे टेस्ट करना चाहते थे। तो क्या है कि कृष्ण जो है हमारे लिए, हमारे फ्री विल को भी हमेशा चेक करते हैं भगवान, टेस्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में। आपके लिए बहुत खराब से कठिन परिस्थितियां आपके सामने रख देंगे और आपके के लिए मुश्किल हो जाएगा, हम क्या करें अब। और उस समय क्या होता है कि हम अंडर प्रेशर जो है भक्ति छोड़ देते हैं या भक्ति से हट जाते हैं। कई बार क्या है कि हम शौक से भक्ति कर रहे होते हैं, बाय हॉबी आ गए या किसी ने पकड़ लिया, आप जुड़ गए तो अच्छा लग रहा, चलो चलने दो, चलता है चलता जा रहा है, और पता चला कि प्रेशर जैसे ही हुआ कि वो सब खत्म हो जाता है, वो भक्ति वक्ति गई, वो अपने घर बैठ गया, कुछ नहीं होता जी, सब देख लिया करके। आप समझ रहे, ये शौकिया भक्त लोग होते हैं जो इस तरह से करने के लिए आते हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर भी ये चीजें तो नहीं हो रही है, और हम कहीं इस तरह के शौकिया भक्त तो नहीं है कि थोड़े से अंडर प्रेशर में बाह्य परिस्थितियों से हमारी भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। और हमें खुद समझना चाहिए कि भगवान मेरे फ्री विल का टेस्ट कर रहे हैं कि इस परिस्थिति में मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। हमें कोई छोटी सी चीज प्राप्त करनी हो इस भौतिक संसार में, कुछ हजार रुपए महीना कमाने के लिए हम 25 साल की पढ़ाई करते हैं, ABCD से लेकर आप समझो लोग BA MA पता नहीं कौन कौन सी डिग्री लेते हैं, MBA पता नहीं कुछ, उसके बाद जाके कुछ हजार रुपए कमा पाते हैं। यही होता है कि कि वो नौकरी करते हैं तो कुछ हजार रुपए कमा पाते थे, इस थोड़े से अपने जीवन को चलाने के लिए 25 साल की मेहनत की उस व्यक्ति ने, 25 साल की पढ़ाई की, 20 साल 22 साल 25 साल की पढ़ाई की, तब जाके उसको आप कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को, तो उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। खाली जो है मायावाद की तरह कि हम कर्म ही छोड़ दें, चुपचाप बैठ जाएं, इससे क्या किसी का शुद्धिकरण होगा? निश्चित रूप से नहीं होगा। तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप सोचिए, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति के अंगों में बहुत ताकत है। भक्ति का एक एक अंग अपने आप में बहुत पावरफुल है। हम केवल प्रतिदिन भागवत सुनेंगे तो इससे हमारे हृदय का जो शोक ताप ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कि श्रृण्वताम स्वकथा, भगवान अपनी कथा जब सुनते हैं तो उस भक्त के हृदय में जा करके उसके जो मैल है उसको खत्म कर देते हैं। परंतु हमारे अंदर जो है वो करने की दृढ़ता नहीं आती। अब दृढ़ता क्यों नहीं आती? क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों और पाप के कारण। भक्ति में दृढ़ता इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारा पाप कर्म है वो हमारा पीछा कर रहा होता है, या हमारे जो कर्म है वो पीछे कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं होती। स्वयं भगवान कहते हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन ते मात्र दृढ़व्रता। ये शाम तु अंतगतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है, जनानाम पुण्य कर्म नाम, जिसके सारे पुण्य कर्म उदित हो चुके हैं, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, वही व्यक्ति द्वंद से रहित होकर, द्वंद के मोह से रहित होकर मेरी भक्ति करता है। उसके अंदर कोई द्वंद नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो यह स्थिति कब आती है? जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हमारे में दृढ़ता नहीं है तो दृढ़ता लाने के लिए आपको हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्म या हमारे पाप जो है हमारे पीछा कर रहे हैं, तो हमें और तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए कि जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, और खत्म कैसे होगा कि हम इसी में तीव्रता से लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तो तीव्रता से लगना पड़ेगा इस भक्ति में। क्या कि ढीला ढाला अप्रोच जो है वो आपको अगले जन्म में जो है आपको ह्यूमन बॉडी तो दिला देगा, बट भगवान की भक्ति बहुत मुश्किल है। इसके प्रभाव से जो है आप अगले जन्म में ह्यूमन बॉडी में आ जाओगे, फिर दोबारा से कोई समस्या नहीं है, बट फिर दोबारा से जो आपके साथ वही सारी प्रॉब्लम चल रही होगी। इसीलिए बहुत तीव्रता से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। आप देखिए, एक भौतिक आकांक्षा थी हिरण्यकश्यपु के अंदर, तो उसने कितनी तीव्रता से जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करी, कितनी तीव्रता से ब्रह्मा जी की तपस्या करी एक भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए। तो हमें आध्यात्मिक चीज प्राप्त करना है तो उसके लिए हम भक्ति में तीव्रता नहीं दिखाते। तीव्रता दिखाने का मतलब है कि वो सब काम ना करें जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। भगवान जो है वो कभी कंडीशंस, जो बद्ध आत्माएं हैं उनकी प्रार्थनाएं सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वही है कि वचस अन्यत, मनस अन्यत, कर्मस अन्यत, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। हम यहां आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें भक्ति दो, भक्तों का संग, और बाहर जाके कुछ और करने लगते हैं। हम वो सारे काम करते हैं जो भक्ति के विपरीत होता है। तो भगवान भी देखते हैं ना, ये क्या कर रहा है, अभी यहां से प्रार्थना करके गया है और यहां अभी जाके देखो ये क्या कर रहा है। इसीलिए भगवान जो है वो कंडीशंस की प्रार्थना सुनते नहीं है। भगवान जो है शुद्ध भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। हम केवल अपने गुरु को प्रसन्न कर लेंगे तो गुरु अगर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से फिर भगवान को सुनना पड़ेगा। सुनते नहीं है, सुनना पड़ता है। कृष्णा विल हैव टू, आप समझ गए बात को। जब प्रभुपाद ये कहते हैं कि आप 16 माला का जप करो, सेवा करो, आप 8 घंटे 4 नियमों का पालन करो तो मैं भगवान के धाम ले जाऊंगा, तो ये गारंटी कौन दे रहा है? प्रभुपाद दे रहे हैं, कृष्ण ही गारंटी दे रहे हैं इसका कि आप भगवान के धाम चले जाओगे। ऐसा कृष्ण आपकी इस भक्ति से कोई प्रसन्न नहीं है कि 16 माला का जप और खाली कुछ सेवा और 4 नियमों का पालन करके आप भगवान के धाम चले जाओगे। ये कृष्ण को बिल्कुल इंप्रेस नहीं करता, पर प्रभुपाद बहुत इंप्रेस करता है। और एक गारंटी प्रभुपाद ने ली है अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि जो मंगल आरती गाएगा 12 साल तक कंटिन्यूसली वो उसको भगवत धाम मिल जाएगी, तो ये गारंटी कौन दे रहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल ताकत के बल पर, अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति के बल पर। कृष्ण ये गारंटी नहीं देते कि 12 साल तक आप आओगे और संसार दावा लगाओगे और मेरे धाम पहुंच जाओगे। कृष्ण को यह सब चीजें आकर्षित नहीं करती, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये गारंटी देते हैं तो वो उनकी जिम्मेवारी हो आपको लेके जाएंगे। कोई भी आचार्य कोई भी चीजें जब आपको ये कहने के लिए कहता है कि आप ये करिए और इसको करके आप भगवान के धाम जाएंगे, दैट इज गारंटीड बाय दैट पर्टिकुलर आचार्य। उस पर्टिकुलर आचार्य के द्वारा जो है वो एम्पावर किया गया होता है, ये कृष्ण के द्वारा एम्पावर नहीं है। कृष्ण तो कहते हैं नमे साध्यत सांख्यो गो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। हे उद्धव, मुझे कोई तपस्या, मुझे कोई दान, मुझे कोई सब कुछ भी आकर्षित नहीं करता, कुछ भी आकर्षित नहीं करता। तो क्या आकर्षित करता है आपको? यथा भक्ति ममोर्जिता, मेरे लिए अर्जित की गई भक्ति। और सेम बात जो बात भगवान 11वें स्कंद में कह रहे हैं, इससे पहले जो है वो जर भरत रहुगण को बता रहे हैं, रहुगण तपसा नयाती न चे जया निर्वपना त्रिभाद्वा न छंद साम न जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो विषेकम। कि हे रहुगण, ये तपस्या से प्राप्त नहीं होता। क्या तपस्या से प्राप्त नहीं होता? ये भक्ति जो है उस तपस्या से प्राप्त नहीं होता। रहुगणिता तपसा नयाति न चेज्यया, इच्छया से अर्थात भगवान की पूजा करने से और आरती करने से भी प्राप्त नहीं होता। न छंद साम, बड़े बड़े श्लोक पढ़ने से भी नहीं प्राप्त होता। न जल में खड़े होने से, सर्दियों के महीने में जल में खड़े होकर तपस्या करने से भगवान मिलते हैं या भक्ति प्राप्त होती है। ना कह रहे हैं कि जो अग्नि गर्मी के महीनों में अग्नि के समक्ष खड़े होकर तपस्या करने से भी नहीं मिलते। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना किसी महान आचार्य के चरणों की धूलि अर्थात उनकी कृपा लिए बिना कोई स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारा मेन बिजनेस होना चाहिए उस आचार्य को प्रसन्न करने की, अपने गुरु को प्रसन्न करने की। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, क्योंकि एक कंडीशन सोल केवल अपने प्रयास के बल पर भगवान के धाम नहीं जा सकता, निश्चित रूप से नहीं जा सकता है। तो उसको ऐसे व्यक्ति का जिसके हाथ खुले हुए हैं, जो व्यक्ति मुक्त है, उसकी उसको जो है उसको खुश करना पड़ेगा, यानी उसकी कृपा लेनी पड़ेगी। अगर वो शुद्ध भक्त कहता है, अगर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर बोलेंगे कृष्ण को कि मैंने आप इसको एक्सेप्ट कर लिया, आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए, देन कृष्णा विल हैव टू एक्सेप्ट। चाहते नहीं भी होंगे, आप समझिए, जैसे कोई हमारा बहुत बड़ा आदमी है और आप प्राइम मिनिस्टर के को बहुत अच्छी तरह से उसका मित्र है और हमें पकड़ के ले जाएगा, मेरी क्या योग्यता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल सकूं? पर वो कहेगा नहीं, मैं तुम्हें मिलना पड़ेगा, ये मेरा मेरे साथ आया है। तो प्राइम मिनिस्टर को मिलना पड़ेगा। तो कृष्ण इस तरह से जो है जो, क्योंकि जो प्रेम है वो ज्ञान से बहुत ऊपर है और कृष्ण उसी प्रेम से बंधे हुए, ज्ञान से इंप्रेस नहीं होते। बहुत अच्छा ज्ञान है मुझे, बहुत अच्छा प्रवचन कोई दे सकता है, बहुत अच्छा श्लोक बोल सकता है, इससे कृष्ण को हम पब्लिक को इंप्रेस कर सकते हैं, पर आप भगवान को इंप्रेस नहीं कर सकते इससे। भगवान इससे इंप्रेस नहीं होते हैं। भगवान इससे इंप्रेस होते हैं कि हम अपने गुरु को, अपने जो है स्पिरिचुअल मास्टर को किस तरह से प्रसन्न कर पाते हैं। किसी भी भक्त की शुद्धता उतनी पर निर्भर करती है, जितनी मात्रा में उसने अपने गुरु को प्रसन्न किया है उतनी ही मात्रा में उसकी उसके अंदर शुद्धता आएगी। प्रोपोर्शनेट टू जो है, जितनी प्रोपोर्शन में अपने गुरु को प्रसन्न करता है उतने प्रोपोर्शन में उस व्यक्ति के अंदर शुद्धता जाती है। और ये कृष्ण ही, ये परमात्मा के रूप में कृष्ण ही सब कुछ करते हैं ये सब कुछ। तो हमारा जो मेन बिजनेस है वो गुरु की प्रसन्नता है हमारी। अगर हम नियमों का पालन करते हैं, हम भक्ति के अंगों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारी दृढ़ता को देखकर कृष्ण अपनी दृढ़ता छोड़ देंगे। कृष्ण की भी दृढ़ता है, भक्ति उक्ति नहीं देनी है इनको, बीच में टटका देंगे आपको, कुछ दे दिया बीच में, कुछ दे दिया एनीथिंग। जैसे अभी क्या होता है कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, पर जब एडवांस स्टेज आता है भक्त का तो गॉड प्रपोजेज डिवोटी डिस्पोजेज, ये एडवांस भक्त के लक्षण है कि भगवान प्रपोजल देते हैं और भक्त इतना नहीं चाहिए, सिद्धि ले ले, सम्राट बन जा, तेरा बहुत नाम हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट मिल गया, तो फिर वो एडवांस भक्त का मतलब है कि उसको वो भी नहीं चाहिए। भगवान प्रपोज कर रहे होते हैं, वो मना कर रहा होता है, नहीं चाहिए। तो हमारी जो स्थिति है, ये स्थिति, ये एडवांस भक्त के लक्षण है। तो ये तब प्रकट होंगे जब हम अपने गुरु को प्रसन्न करेंगे, नहीं तो फिर ये हिरण्यकश्यप वाली स्थिति होगी, कम से कम देना है और ज्यादा से ज्यादा लेना है, उसी को हटा के उसी को मारना चाहते हैं। जैसे भस्मासुर की स्थिति थी, शिवजी से प्रदान प्राप्त किया और शिवजी को ही मारना चाहता था। तो कर्मी जो व्यक्ति है वो उसकी यही स्थिति होती है, परंतु भक्त की स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। भक्तों में अगर हम इस नियमों का पालन करते हैं, हम रोज भागवत सुनते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो इसमें इतनी ताकत है कि निश्चित रूप से हम एक दिन शुद्ध हो जाएंगे, पर आपको दृढ़तापूर्वक लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा जो है भगवान को प्रसन्न करने का या अपने गुरु को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है। और हमारा जो महात्मा का मतलब है, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मस्य एकम महात्मना, हमारे मन में, विचारों में और कर्मों में एकता होनी चाहिए। पर इस बात का हम अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ना जीतने योग्य अजीत है, भगवान को अजीत कहा जाता है, जिसको कोई जीत नहीं सकता, उस अजीत को भी आप जो है वो जीत सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं एक आध, क्योंकि 9 बज चुके हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, पिता एक और प्रेमानंदे।